फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज छोटी सी हमें गौर व फिक्र की तवज्जो मांगती है, और वो क्या है कि लफ्ज खलीफा आदम के लिए इधर आया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, दो नबियों के लिए लफ्ज खलीफा आया कुरान में, यहां आदम और आगे आप पढ़ेंगे हजरत दाऊद के लिए अल्लाह सुबहाना तआला ने लफ्ज खलीफा इस्तेमाल किया है। क्यों किया है आप जरा इसका एक रब तो देखिएगा। बिल्कुल सही रिवायत है, आप चाहें तो मैं उसको अरबी में भी शेयर कर सकती हूँ लेकिन टाइम नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, तो उनकी सारी औलाद की रूहें भी उनको दिखा दी, यानी आप कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम नोज मी, मुझे, आप अपने लिए कहें कि आदम अलैहिस्सलाम आपको भी जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनके आने वाले सब बच्चे उनको दिखा दिए जब हम सब रूहों की शक्ल में थे। वहां एक शक्ल थी, इतनी करोड़ों, आप देखिए मिलियन ट्रिलियन बिलियन, कितनी इंसानियत गुजर गई और पता नहीं आगे कितनी आनी है, उन सब में से एक चमकती हुई रूह देखी। अल्लाह जी ये कौन है? कहा ये तेरा बच्चा दाऊद होगा। कहा अल्लाह ये इतना खूबसूरत है? कहा बड़ा खूबसूरत है। कहा आपने इसकी उम्र कितनी रखी है? कहा ये 60 साल का होके मरेगा। नहीं अल्लाह ताला ये बहुत थोड़ी उम्र है, इतना प्यारा मेरा बच्चा आप इसको 60 साल देंगे? कहा अच्छा फिर आप अपनी उम्र में से कुछ डोनेट कर दें। ओके जो मेरी कितनी है? 1000 साल होगी, चलो उसमें से 40 देकर मेरे बच्चे को 100 का तो कर दो। ये वाक्य आपने सुना हुआ पहले? ये सही रिवायत है, हदीस है, बिल्कुल ठीक रिवायत है कि फनसी आदम। अब क्या हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र खैर से 960 साल हुई तो मलकुल मौत आ गया कि आदम जी आप अपनी जान दें, क्योंकि नबियों से पूछ के जान निकाल ली जाती है। कहा मेरे तो भी 40 साल रहते हैं। कहा आपको याद नहीं, वो आप दाऊद को दे चुके हैं? मुझे तो नहीं याद। अब क्या हुआ, याद है? फनसी आदम, आदम भूल गए। अल्लाह ने आदम को भी 1000 बुरा कर दिया और उनको भी 100 बुरा कर दिया। ये सही वाक्य है। इसको जरा सा मैं यहां जोड़ के आपको समझाना चाह रही हूं कि अल्लाह का क्रिएशन प्लान क्या था। खलीफा का लफ्ज यहां भी है, और खलीफा का लफ्ज सिर्फ दाऊद के लिए आया। क्यों? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो सिंबल हैं, अलामत हैं कह लें, जहां दीन और दुनिया की तरक्की मुसलमानों पे जमा हो गई थी। अल्लाह ने उनको खिलाफत भी दी, नबुवत भी दी, बादशाहत भी दी, दुनिया के मिरेकल्स भी दिए, परिंदों की बोलियां भी जानते थे, उनके पास अल्लाह ने बहुत रिसोर्सेज दिए। अब मैं आप जो बात करने लगी ना उसको गौर से समझिएगा। आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत देने का वादा किया अल्लाह ने, दाऊद को दी। क्यों? आज मेरे आपके लिए सबक है, दुनिया में मुसलमान वर्ल्ड लीडर या खलीफा या रूलर्स कब बनेंगे? जब इल्मुल वही और इल्मे दुनिया को जमा कर देंगे। आज मेरा आपका उम्मते मुस्लिमा का फर्द होने के नाते ये जुल्म है गैर मुस्लिम हुक्मरानों पे और गैर मुस्लिमों पे, क्या हम उनको इल्म वही नहीं दे रहे? वो तो हमें सर्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बोस्टन यूनिवर्सिटी और ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और ऑस्टन यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज के नाम आपको भी आते होंगे। वो तो अपना बेस्ट आपको दे रहे हैं। कभी उन्होंने बुखल किया? खबरदार हमने तुम्हें इसमें नहीं दाखिल होने देना। उन्होंने हर मुमकिन तौर पे फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट क्या होता है? आसान कर दिया, सहूलतें दे दी कि आप किसी तरह हमारे क्यूरिकुलम पढ़ें। क्या हमने इल्मे वही उनको देने के भी इतने इख्तमामात किए? अब बात समझ आ गई है? ये दुनिया कब एक आइडियल प्लेस होगी? हम अक्सर कहते हैं हाय कभी हमारी जिंदगी में भी दुनिया में खैर आएगी। ये कब होगा? जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 6-8 और ब्रांचेस दुनिया में बन जाएंगी? नो। जब इकिया सारी दुनिया के मुल्कों में छा जाएगा और भी जगह? नो। ये टोयोटा कंपनी के बेस्ट मॉडल की गाड़ियां बनाने से दुनिया बेस्ट बनेगी? नो। आईफोन 6 की बजाय आईफोन 16 बनेगा तो बनेगी? नो। ये वन साइडेड तरक्की दुनिया को कभी अमन चैन सुकून नहीं दे सकती। ये कब होगी? नॉन मुस्लिम अपना इल्म में दुनिया बढ़ा रहे हैं ना, तो मुसलमान अपना इल्म वही फैलाएं। वो टेलीफोन से भी, वो नेट से भी, वो मीडिया से भी, वो टेलीफोन से भी, वो हर मुमकिन तरीके से दूसरों तक इस इल्म को शेयर करें, इम्पार्ट, फैलाओ। वो आपको देते हैं, आप गिव एंड टेक, आप हमें ये दीजिए, हम आपको, आप हमें गाड़ियां बना के दें, ठीक है, आप बनाइए, वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड। हमें कोई जरूरत नहीं है गाड़ियों का प्लांट लगाने की पाकिस्तान में, बट हम आपको थोड़ा सा गाड़ी में बैठना और गाड़ी को एक नेमत समझना और गाड़ी देने वाले को देखना, ये देते हैं। गोया के आप गाड़ी बनाए, हम गाड़ी का मैनुअल बनाते हैं। ये लीजिए, आप ये मैनुअल ले जाइए और अपने गाड़ियां बनाने वालों को ये साथ साथ एक फ्री गिफ्ट में देते जाइए कि गाड़ी में बैठने के बाद फीलिंग क्या आनी चाहिए, سبحان الذي سخر لنا هذا الحمد لله بنعمته تتم الصالحات, یعنی ہمیں انسانیت کو اس دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے ہونے کا احساس دلانا. جب مسلمانوں نے یہ کام کیا, اور کیا واللہ ہی کیا, 1000 سال سے زائد تک مسلمان یہ کرتے رہے. آپ پڑھ کے دیکھیے ہسٹری کو, پیچھے مسلمان دنیا کے بھی آگے تھے, آخرت کے بھی آگے تھے. کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ آج ظلم ہے. میں ابھی بھی اپنی بات نہیں سمجھا پا رہی, سوری, لیکن اس وقت ہم ذمہ دار ہیں, امت مسلمہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وی آر ناٹ فلفلنگ آور جاب, اور دین کے نام پہ بھی لاسٹ ہی ہیں. حفظ نہ کر لوں, میرے لیے میں گرامر سیکھ لوں, میرے لیے میں تجویز اور اچھی کر لوں. بھئی آپ چھریاں تیز تو کر رہے ہیں اپنی, بکرا کب کاٹیں گے؟ کفر کے بکرے, شرک کے بکرے, بے دینی کے بکرے, بے حیائی کے بکرے. یہ تو ایسے آپ گھر بیٹھے ہی اپنے آپ کو سنوارتے جا رہے ہیں, سنوارتے ہی جا رہے ہیں. بھئی نکلو, اب ڈاکٹر ہے میں پڑھ لیا, ڈاکٹر بن گئی, اب میں اسپیشلسٹ بن جاتی ہوں, اچھا ہاؤس جاب کر لیتی ہوں, اچھا میں ذرا سا اور آگے بڑھتی ہوں. بھائی آپ فوت ہونے کے قریب ہو گئے, جائیے 4 لوگوں کا علاج کر کے کچھ اپنا علم ان تک فائدے کا بنا دیجئے. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے. یا پھر دوسرا حال پتہ کیا, میں بس اپنے علاقے کے لوگوں کے دان ٹھیک کروں گا. یہی کریں گے ہم؟ نہیں, آپ کا دان نہیں ٹھیک کرنا, کیونکہ آپ سنی ہیں. آپ کا میں بالکل نہیں کر سکتی, آپ وہابی ہیں اور آپ تو شیعہ ہیں اور آپ تو وہ ہیں. خدا حافظ, میں آپ کے دان نہیں ٹھیک کر سکتا کیونکہ میں قرآن والا ہوں. آپ کافر ہیں, اس لیے آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں. میری گھر کی دروازہ آپ سے الگ ہونا چاہیے. آپ کتا کو رکھتے ہیں, آپ کے کتے کی وجہ سے میرے راستے ناپاک ہوتے ہیں. پتہ نہیں میری جوتی کے نیچے بھی کتے کا بال لگ گیا تو میری تو پھر نماز ہی نہیں ہونی. خدا حافظ. تو یاد رکھیے, یہ رانگ ایٹیچیوڈ ہے. دنیا کی خلافت بھی اس کو ملے گی جو دین اور دنیا کا دونوں کا علم لے گا. اب بات تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن بات سچ ہے کہ یہاں آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی طرف سے بات کیا تھی, نحن نسبح بحمدک. اس میں بھی خزانہ, لیکن میں اتنا ڈیپتھ میں نہیں جاتی. صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ جیسے یہاں فرشتوں کے تسبیح کرنے کی بات ہے نا, ہم نے تسبیح سے کیا سوچا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ طہٰ میں اپنے بھائی ہارون کو ساتھ ملانے کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اس کے آگے کیا ہے؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بات سمجھ آئیے؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آپ پارے پہ اپنے دیکھیں گے, نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وہی دو لفظ ادھر ہیں, یعنی جیسے خلافت کا لفظ آدم اور داؤد میں جمع ہو گیا نا, تو تسبیح کا لفظ موسیٰ اور فرشتوں کا جمع ہوا. فرشتوں کی تسبیح کون سی تھی؟ سبحان اللہ وربل. موسیٰ یہ بیٹھ کے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہارون کو میرے پاس بٹھا دے, پھر ہم دو مل کے بیٹھ کے 500 دانوں کی تسبیح پڑھ لیں گے, اکیلے دل نہیں لگتا. جیسے کچھ لوگ سہیلیوں کو بلا کے درود پڑھاتے ہیں یا آیت کریمہ سوال آ کے, اتنا کٹھے اکیلے تو پڑھا نہیں جاتا, مل کے سب باتیں بھی کر لیں گے پڑھ لیں گے. یہ کون سی تسبیح کرنے جا رہے تھے موسیٰ؟ آپ کو پتہ ہے نا کہاں جا رہے تھے؟ جی آپ بتائیے. تبلیغ, بلغ انی ولو آیا. یہ ہے اصل میں بات, انی عالم ما لا تعلمون, کہ دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا یہ پرپز آف لائف ہے. آپ کو اس ایک کہانی میں سے کتنے کو سبق مل گئے؟ اور ہم سوچ رہے ہیں یہ تو کہانی ہے, اس میں تو ایک بھی لفظ نہیں آئے گا. میں جب پڑھانے بیٹھتی ہوں میں کہتی اس میں کیا بتانا ہے میں نے, یہ تو سب بچے کو کہانی آتی ہے. اور ابھی بھی یقین کریں اونلی 10-15% دیا میں نے آپ کو ان چند آیتوں کا. میں صرف وہ چیزیں آپ کے لیے پک کرتی ہوں. ادھر مجھے بھی پتا ہے آپ گھریلو خواتین ہیں اور بچوں کی مائیں, اور آپ کو جانے کی بھی جلدی, آنے کی بھی مشکل, اور پتہ نہیں کیا کیا. پتہ نہیں یہ میری باتیں آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں, مجھے یہ بھی کوئی گمان نہیں ہے. شاید آپ میں سے 2-4 لوگوں کو میری باتیں فائدہ دیں گی, یہ بھی مجھے پتا ہے. بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کے دور کے یہ پورا جو سپن ہو رہا ہے نا انسان, آپ لوگ بھی ہو رہے ہیں, مانے مائنڈ نہ کریں. آپ کی زندگی اس وقت فوکس نہیں ہے. آپ کئی کشتیوں, 2 کشتیاں چھوڑی ہے, آپ تو 6 کشتیوں کے شکار ہیں. آپ کو گھر بھی دیکھنے, آپ کو باہر بھی دیکھنے, گاڑیاں بھی ٹھیک کرانی ہیں, آپ کو سبزی بھی لانی ہے, آپ کو بچوں کو ایک اسکول سے اٹھا کر دوسرے میں جانا ہے, ان کو جم پہ بھی چھوڑنا ہے, ان کو سوئمنگ پہ بھی جانا ہے. واللہ ہی آپ سب بھی بہت اسٹرگل میں ہیں. آپ سب کی اسٹرگل کا حل بتا رہی ہیں ادھر. بی فوکسڈ. ترقی اس کا نام نہیں ہے. कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आपके बच्चे मेडिकल कर जाए। मेडिकल वाले रोते देखे, डॉक्टर बने हुए परेशान है, शादी नहीं हुई, बच्चे की 35 साल 36 साल उम्र हो गई, डॉक्टर बन गया कि वो कामयाब इंसान है। उसने अभी तक किसी एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम नहीं किया, क्या वो कामयाब है? आपकी बेटी 30 साल की हो गई, डॉक्टर बन गई, हाउस जॉब भी कर लिया, अभी रिश्ता नहीं हुआ, अभी उसने एक बच्चा नहीं पैदा किया कि उम्मत मुस्लिमा को एक अच्छा मुसलमान बच्चा दे दे, क्या वो कामयाब है? 35 साल की उम्र में अगर कोई 30 साल में डॉक्टर बनने वाला मर गया तो उन 5 सालों में उसने क्या नेकी लोगों को दी? नहीं समझ रहे? देखिए ये बातें जज्बाती नहीं है, मैं आपको फिर कह रही हूं कि आई एम नॉट इमोशनल, मैं बहुत आसानी से बात कर रही हूं आपके लिए। छोड़ दें इसको, इधर आगे चलें। सजदा तज़ीमी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वाकई फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था, जिस सजदे का हुक्म है या नहीं? देखिए हम सब शुरू से ये बात सुनते आ रहे हैं, सजदे ताज़ीमी और मखलूक को पहले जायज़। तो याद, मैंने खुद भी आपको पिछले सालों में बहुत दफ़ा बताया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बात आपको बहुत सारी तफसीरों में, जो तफसीर खोलेंगे आपको मिलेगी, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करने का हुक्म दिया था। देखा, हम नहीं कहते पीर साहब को सजदा कर सकते हैं, और जिसके नाम के साथ मुर्शिद लग जाए उसका तो ज़रूरी कर लें, और जो पीरुल पीर और फलां फलां बड़े बुजुर्ग पहुंचे उनको तो करना चाहिए। वह इस खुल नलिल मलाइका तिस्जुदू ली आदम, ये ली को देख लें, ली किसको कहते हैं? फौर। अरबी जुबान में आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के हुक्म के साथ जो लफ्ज आया ना, वो ली है। ली किसको कहते हैं भाई? ली वास्ते। तो मैं आपसे कहती हूं कि मैं काबा के लिए सजदा करी हूं। देखिए ली काबा, मुझे पता मुश्किल सवाल है, मुश्किल से बात कि मुझे पूछना नहीं आ रहा, लेकिन आप मेरी मदद करें कि हम क्या कहते हैं, कि मैं काबा की तरफ सजदा कर रही हूं, या मैं ये कहती हूं कि काबा के लिए सजदा कर रही हूं? की तरफ कर रहे ना, इला काबा। तो इधर क्या लफ्ज आना चाहिए था? अगर आदम अलैहिस्सलाम को ही सजदा करवाना है हमने, या इस आयत में यही मफहूम ले कि वाकई आदम बैठे और लोग उनको सजदा कर रहे हैं, इट्स ओके, हम कर सकते हैं, सोचते, तो फिर इधर जुमला क्या आना चाहिए था? वाइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू इला आदम। कितनों को ये बात समझ आ गई, ली और इला की? आसान है ना, ये जुमला आना चाहिए था कि आदम की तरफ, जैसे हम कहते इला काबा, तो इला तो नहीं आया, ली आया, तो ली मैंने फौर। अब बात थोड़ी सी करीब है, हम आदम के लिए सजदा करो, भाई ये ली क्यों कहे, फौर कहना चाहिए था। तो मैं आपको बताती हूं, आप बैठे हुए एकदम खबर मिलती है पाकिस्तान मैच जीत गया, अब आपका बेटा जो क्रेजी है मैचेस का, वो फौरन उठता है और जाके तो सजदा करता है जमीन पे। आप कहते हैं ये क्या किया तुमने, तो वो क्या कहता है? मैंने इस जीत की खुशी में सजदा किया, या जिसको आप सजदा शुक्र कहते हैं, वो होता है ली। भैया आप सजदा क्यों कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि अल्लाह ने मुझे खुशी दी। समझ आई बात की? ली आदम में क्या, आदम के लिए, यानी अल्लाह ने आदम को नहीं, आदम के लिए, कि ये एक सेकंड राय है, वो अपनी जगह मौजूद है राय, कि सजदे का लफ्ज यहां ली तरफ इला के है, मुराद आदम है, लेकिन यहां ये भी इम्कान मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं सजदा करवाया, बल्कि आदम जैसी एक मखलूक उसको इज्जत दी है, ये कह लें। मैं आज सुबह सोच रही थी तो मुझे ना ऐसे, जैसे मैं अकेली थी तो मुझे झुरझुरी आ रही थी कि इंसान है अल्लाह का मास्टरपीस। आप कभी जरा अंदर से खोल के तो देखें इंसान को, रगें, वेन्स, वरीदें, ब्लड और खून और गोश्त, फिर नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर आपका अंदर से आप देखिए कि लंग्स हैं, 70-70 चीजें अंदर। तो क्यों ना अल्लाह सजदा कराता कि देखो ये है मेरा मास्टरपीस, तुम इसकी खुशी में सजदा करो, यानी एक राय मौजूद है। ग्रामर की रोशनी में देखें तो यहां बिल्कुल नहीं ये दिख रहा कि आदम सामने बैठे थे और फरिश्ते उनके आगे झुक गए, ये लफ्ज नहीं बता रहे। और दूसरी बात है, कोई सही रिवायत आपको सजदा ताजीमी के हक में नहीं मिलती। चलिए यहां फिर एक और छोटी सी बात, पूरे कुरान में दो सजदा ताजीमियों का जिक्र आया अदर देन अल्लाह के, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा जी? यूसुफ। बिल्कुल, यहां आदम को सजदे की बात हो रही है, वहां यूसुफ के, आप सर यूसुफ घर जाके खोल के देखें, वहां भी ली की बात है। यानी सारी बात का खुलासा क्या है कि आदम के सामने वो जाहिरी झुके थे, या सजदे का एक मानवी माना क्या होता है? टू सरेंडर, کون سا تھا؟ اللہ نے اسی بس گنجائش دونوں کی موجود ہے، لیکن یہ مان لیجئے کہ ہم مسلمان اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. بس ہندو کہتے ہیں ہمیں بھی تو پتھر کے بت کو پوجنے سے منع کرتے ہیں، تو یہ کعبہ بھی کیا، یہ بھی پتھر کا گھر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہم یہ نہیں کہتے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبہ بنانے والے رب کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات بھی ختم ہو گئی، سجدے کی فسر جدو والی بات بھی ہو گئی. سبق کے آخری حصے پہ چلیے، آدم علیہ السلام کے گناہ کی معافی کیسے ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ان آیات میں جو ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں تو آدم علیہ السلام کو ایک آنر دی ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ ما آدم الاسماء کلہا، ٹھیک ہے، پھر فسجدوا، فرشتوں سے سجدہ کروا لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو پہلے اتنی عزت دے چکے تھے، تو پھر جنت میں ایک درخت کے پھل سے کیوں روکا؟ سوال سمجھ آئے؟ دیکھیے آپ کسی کو بڑی عزت سے بلائیں، آپ آئیے ہمارے اس پروگرام میں، آپ گیسٹ آف آنر ہیں، آپ ادھر بیٹھیے، آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پرائزز دیجئے، عزت دی نا آپ نے، تو کیا آپ ان کو ادھر بلا کر پھر کسی امتحان میں ڈالنا چاہیں گے؟ وہ امبیرس فیل کرے گا. یہ کویسچن لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو عزت دے دی، اتنا کچھ دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو بعد میں درخت کے ایک پھل سے کیوں روکا؟ یہ ایسی ہے جیسے آپ اپنے گیسٹ کو کہہ دیں یہ ساری ٹیبل لگی ہوئی ہے، آپ سوپ کھائیے، بس یہ اس ٹیبل سے کچھ نہ کھائیے، تو عام طور پہ تو یہ معیوب لگتا ہے نا، رکھے ہی نا، یہ بھی ایک کویسچن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیبل کا کھانا کوئی نہ کھائے، تو آپ یہ رکھے ہی نا، جب اس کے کھانے کا وقت آئے لے آئے، تو اللہ نے کیوں آدم بیچارے کو ایک مشکل میں ڈال دیا؟ تو لکھ لیجئے نعمت کے ساتھ امتحان ہے، یہ بھی کریشن پلان کا حصہ ہے، جتنی نعمتیں اتنے بڑے امتحان. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یہ سبق سکھا دیا مجھے آپ کو اپنے لیے، جب زندگی میں آپ کو کوئی نعمت ملے گی، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، خوبصورتی کی نعمت، سمارٹنس کی نعمت، دولت کی نعمت، ادھر امتحان ہوگا. دیکھیے استاد کس چیز کا امتحان لیتا ہے؟ جو سکھایا ہوتا ہے. تو سکھانا کیا تھا؟ نعمت، وہ علم مل گیا نا، اسی میں سے امتحان. میں یہ تو نہیں آپ سے کہہ سکتی کہ پہلے پارے کے آخری ہاف کا ٹیسٹ ہے نیکسٹ ویک، مجھے حق نہیں ہے اس کا. ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان شروع کی 40 آیتوں کا آپ کا ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ نعمت آپ کو دی ہے نا علم کی، تو آپ سے لے رہے ہیں. اللہ نے آدم کو اس امتحان میں ڈال کر ایک بات تو یہ سکھائی ہمیں کہ اس دنیا کی نعمتوں کو پا کر بھولنا نہیں. یعنی آپ لکھیں، میں اپنے ذہن میں نا پوائنٹس سوچ رہی ہوں کہ اس دنیا کے کریشن پلان کو سمجھنے میں اب ایک چیز کیا آ گئی، جو نعمت آپ کو مجھے ملتی ہے وہ امتحان ہے. اور پھر مزے کی بات، ایک اور حدیث اسی کے ساتھ جوڑ لیں، کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. آدم سے حسد کیا کسی نے؟ ابلیس اس کی مثال ہے. تو پھر مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ شاباش، نعمتوں کو پا کے غافل نہیں ہونا، بی کیئرفل، یو ول بی جیلسڈ بائی سم ون. دیکھو اپنی خوبصورتی نہ دکھانا لوگوں کو، دیکھو اپنی دولت کا اظہار نہ کرنا، نمائش نہ کرنا اپنی بیٹی بہو کی، تم آزمائے جاؤ گے، تم سے حسد کیا جائے گا جیسے آدم سے ابلیس نے حسد کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا، جہاں نعمت وہاں آزمائش. اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک کہنا چاہیے کہ متفقہ چیز جو میں نے ارد گرد ادھر لوگوں کو دیکھی ہے نا، ایک بچہ وہی جوانی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ماں کا دل اس میں، بہنوں کا دل اس میں، سب کی نظریں اس پہ لگی، یہ ہمارے مستقبل کا سہارا، یہ بڑھاپے کا سہارا، اسی کی پکڑ آ جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں ڈے ون پہ ہمیں سمجھا دیا، مجھے بھی، میرا نام لے، آپ اپنا لے، کہ دیکھو جب کوئی نعمت تیرے پاس آئے گی تو یہ تمہارا کوئی انعام نہیں ہے، یہ پرائز نہیں ہے، یہ گفٹ بھی نہیں ہے، یہ امتحان ہے. میں کہتی ہوں سوچ سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دنیا میں جینے کی؟ اکڑاتی ہے اندر آپ کو کوئی چیز لے کے، ہاں جی میں نے کیا. آدم کندھے ٹھپ ٹھپ، اللہ دیکھو میرے جیسا علم کس کے پاس ہے. اور یہاں ایک اور بات بتائی کہ اللہ ما آدم الاسماء کلہا، آدم کو کون سے علم دیے تھے؟ دنیا کا، لیکن شیطان کے وار سے نہیں بچ سکے. سمجھ آئی؟ उसके बाद फहिम मयाती अन्नकुम मिन्नी हुदन का वादा किया, इल्मुल वही। दुनियावी इल्म के बावजूद बंदा शैतान से नहीं बच पाता, ये मुराद है। और इल्म वही ही है जो शैतान को आपसे दूर करता है। आप चाहते हैं आपके बच्चे शैतानी तरीकों से दूर हो, आप चाहते हैं आपकी नस्लें सिक्योर्ड हो, तो फिर अपने बच्चों को इल्म वही देंगे आप। दुनिया की तालीम उनको शैतान के वार से नहीं बचाएगी। आप कह लें कि दुनिया की इल्म होगा ना तो वो शैतान से डरेंगे, और दीन का इल्म होगा ना तो शैतान उनसे भी डरेगा। अच्छा, अबा का लफ्ज आपने देखा, मैं इसको सुन रही थी तो मैं हंस रही थी, जरा इसको बिगाड़ के पढ़िए। अबा का लफ्ज क्या, शैतान ने क्या कहा था? अबा बता दिया था ना आपको, सख्ती से इनकार करना। अच्छा, आप इसको कहते हैं अबा, उर्दू में क्या कहते हैं हम? अब्बा। तो ये अब्बा जी का भी इनकार करते हैं ना बच्चे। अच्छा, आप इसको अब्बा पढ़ें, किसी को याद है 30वें पारे की आयत सूरत आला पढ़ें, अब्बा चारा, अबा पढ़ेंगे ना आप तजवीद में। अबा उसने इनकार किया सख्ती से, बा पे जरा सी शक डाल देंगे ना तो चारा बन जाएगा। ये एक इस लफ्ज के अंदर छोटा सा मानी था जो देख लें। ये अबा के एक दो मानी और सामने आ गए, नोट करना चाहे कर लें, छोड़ने तो छोड़ दें, लेकिन मैं बोल देती हूँ। अबा जो है ना ये फेले माजी है, इबाहुन और इबातुन से, मकरूह समझना, नापसंद जानना। और जब इबाहुन हो जाता है तो मानी होता है सर फेरना, ना मानना। इसी तरह काम पर ताकत रखते हुए ना पसंदीदगी से रुक जाना, यानी आप काम कर सकते हैं वो, लेकिन यू डोंट लाइक टू डू दिस, तो आप कहते मैं नहीं करती, कंधे उचकाना, रुक जाना। और इस्तकबरा का मैंने आपको पीछे थोड़ा सा बता दिया था, किबर होता है तो ये अंदर होता है और इस्तकबरा होता है तो ये बाहर आ जाता है, फिर आप दूसरों से भी तलब करते हैं। अच्छा खैर, आगे चलिए। आदम अलैहिस्सलाम की तलक्की का जिक्र थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ। लफ्ज तलक्का देखिएगा, जो मैं लफ्ज बोलती हूँ ना उसको हाईलाइट करके ना अपने कुरान में, तो फिर उसके नीचे ये छोटे छोटे चंक्स लिखिए। लफ्ज तलक्की क्या है? बाब तफाउल से फेले माजी है। इसका मानी होता है पकड़ लेना, ले लेना, कबूल करना। अगर आप ये सारे मानी पढ़े ना तो मैं कैसे बोलूंगी, बस पकड़ लिए आदम ने या कबूल कर लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलेमात। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इससे मिलता जुलता लफ्ज कभी को पीछे अभी इन पिछली सायतों के अंदर आपने पढ़ा? शीशा बाश व इजा लकुल लजीना, तो तलक्की में मुलाकात है। पहले तो लफ्ज फा को देख ले, फतलका। फा क्या होती है? फौरन। अरबी जुबान में मुस्तकबिल के लिए कोई काम होता है ना, उसके लिए दो लफ्ज आप बहुत पढ़ेंगे, फा वर्सेस करके लिखिए सुम्मा, सुम्मा है ना, ये दोनों लफ्ज आपके जहन में कहीं। फा का मानी होता है फौरन किसी चीज का करना, मुस्तकबिल करीब। और सुम्मा क्या है? आफ्टर सम टाइम। साउंड से याद रख लें, फा जो है ना तलक्का से पहले ये बता रही है आदम अलैहिस्सलाम वाज ईगर टू लर्न, सोचा नहीं, क्यूरियस थे तौबा के कलेमात सीखने के लिए, बात समझ गए। और यही हदीस में आता है, कुरान में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह निसा के बिल्कुल शुरू में ये आयतें गुजरेंगी कि इन्नमत तौबतु अलल्लज़ीना यतूबूना मिन करीब, याद आई है किसी को आयत? 13-14 नंबर आयत है ये। इसी के बाद फिर वो दूसरी आयतें शुरू होती हैं जो जिना की सजा है, तो फौरन तौबा की। और हदीस भी यह है कि आपने फरमाया गुनाह हो जाए तो उसके पीछे तौबा लगा दे, ठीक है। अल्लाह सुभान व तआला का थोड़ा सा बंदे को माफ करने का भी कुलिया इस आयतों में मुझे आपको समझ आ गया। पहले तो मैं इकरार करूंगी कि हम दीनदारों ने लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर किया हुआ है। मारेगा, गुनाह कर लिया, अब देखना बच्चों तुम्हारे साथ होना क्या, ये स्टाइल है। हालांकि अल्लाह सुभान व तआला की सुन्नत है कि बंदा जब तौबा करने लगता है ना, अल्लाह तआला फौरन उसकी तौबा कबूल करता है। एक होता है लफ्ज तौबा, सीखना, यानी यहां ये भी तो आ सकता था ना, फतलक्का आदम उम्मि रब्बिही की बजाय था फअल्लमा आदम अल तौबा के अल्फाज, नहीं। तलक्की में क्या है? मिलना। मैं आपको एक जुमले में ये फर्क समझा सकती हूँ। कुछ लोग हैं जो घर से इल्म लेते हैं, अपनी सहूलत के वक्त पे लेते हैं, लिंक ले रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से रेडियो से सुन लिया, ऐप से सुन लिया, वेबसाइट से सुन लिया, है ना। ऐसे हजारों ऐसे लोग मौजूद होंगे दुनिया में जो आज भी उस्तादों से डायरेक्ट नहीं सीखते, कहीं और से सीखते हैं ना। वो क्या है? इल्म लेना, अल्लामा। आप क्या ले रहे हैं इस वक्त? तलक्की। इसमें मुलाकात भी है, तलक। इसमें क्या होता है? अब यहाँ बड़ा खूबसूरत मानी है, अगर मैं आपको बता पाऊँ तो बहुत ही मेहरबानी है। अल्लाह की तलक्की के लफ्ज़ में इरादतन या गैर इरादी तौर पर किसी से मुलाकात हो जाना। मसलन मैं इरादा करके गई कि मैं आपको मिलने जाती हूँ आपके घर, ये तो मेरा इरादा था, लेकिन मैं यहाँ से नीचे उतरी, एकदम दूसरी किसी सिस्टर की गाड़ी दिखी जो मैंने सोचा भी नहीं था इतने दिन से, वो नीचे आ रही थी, उन्होंने देखा, ओ अरे आप किधर हैं, तो मेरी उनसे भी तो मुलाकात हो गई ना। बिल्कुल इसी तरह लकिया कहते मिलने को, चाहे आप इरादे से मिले चाहे गैर इरादे से मिले। सूरत मोहम्मद में ये लफ्ज आप पढ़ेंगे, दुश्मन से मिलने की बात की गई और वहां लफ्ज लिखा आया, तो दुश्मन से कोई खुशी से तो नहीं मिलता, ठीक है? लेकिन जब ये लाका युलाकी में आता है ना, तो नापसंदीदगी से मिलना है। ये भी कुरान में, वही नहुमलाकु रब्बिहिम, यानी काफिर चाहे मिलना ना मिलना चाहे उसको मौत के साथ ही अल्लाह से मिलना है। अच्छा यहाँ क्या लफ्ज है, इतना खूबसूरत ये लफ्ज है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि क्रिस्टल है, टूट ना जाए अगर मैंने इसकी कमी बेशी कर दी। तलक्की लफ्ज में किसी से मोहब्बत से मिलना। कुरान पाक में एक लफ्ज आया है, अगर आप में से कोई वो आयत बता दे, ऐसी बता दे कोई आयत नहीं सिर्फ उसके नियर अबाउट, तो आप मुझे खुशी होगी जहां ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तलक्का हुमुल मलाइका, मौत के वक्त मोमिन को जो फरिश्ते लेने आते हैं ना, वो है तलक्की, खुशी और शौक से मिलना। आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म का सफर या दुआ के अल्फाज सीखने का सफर मोहब्बत और शौक से किया। अब यहां मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करूंगी, सबको जो भी लोग यहां मौजूद हैं, वल्लाही आप इस वक्त तलक्की की बेहतरीन चलती फिरती मिसाल है, और जो 5-6 साल से लगे हुए हैं उनको तो सलाम है। आपका यहां आना सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब इसमें मोहब्बत शौक और खुशी होगी। इल्म का सफर रोते धोते नहीं होता, बोझ बनते नहीं होता, मजबूरियों से नहीं होता, किसी को पीछे से धक्का दे दो तो वो चल पड़े नहीं होता, ये अंदर से उठता है। मांगे जरा अपने लिए कि अल्लाह मुझे शौक दे दे। ये शौक आप पढ़ेंगे हजरत मूसा को जब लगा तो क्या मजे आ गए उनके। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही, खुद से पूछिए चंद बातें, मैं शौक से आती हूँ मजबूरी है? देखिए मैं अक्सर सबसे कहती हूँ कि मेरा आप सबसे बस एक ही मुतालबा होता है, आपके स्कूल में आने वालों से, आपके गेस्ट, आपके शहर के हर छोटे बड़े फर्द से जो भी फीमेल है, कि आप शौक से इल्म सीखने आए। आप यहाँ के काम करते हैं ये अल्लाह का आपका मामला, अल्लाह ने आपको जो जजा देनी है वो अल्लाह को ही पता है, मुझे तो नहीं समझ आता कितनी देनी है, सच्ची जो बता रही हूँ ना। मैंने कभी किसी को आप में से यहाँ कहा कि काम करें, खाने पकाएं, आप कपड़े बेचे, वल्लाही अल्लाह की कसम खा रही, यहां बैठ के मैं झूठ ना बोलूं, मुझे अल्लाह इसकी तौफीक कभी भी ना दे, यहां तो बिल्कुल ना बोलूं, मुझे सबसे ज्यादा आपकी किस बात से खुशी रग़बत तड़प है कि आप तलक्की के साथ इल्म सीख लें। आप पक से पहले आए क्योंकि तलक्का, आप एंड तक रुके तलक्का, काम करते करते बीच में 5 मिनट मिल गए हैं तलक्का, काम कर रहे हैं कान इधर है तलक्का, हाथ काम की तरफ दिल अल्लाह की तरफ, ये तलक्की है। और वही लोग आते हैं, मैं जब लोगों के उजर देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ अभी तलक्की नहीं है, सीधी सी बात है, जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह ताला हमें ये शौक दे दे। क्या बहुत बड़ा महाज है कि आप गाड़ी निकालें घर से और 2 घंटे के लिए आ जाएं इधर, सिर्फ तफसीर सुन के चले जाएं, ये मुश्किल है क्या? ये पहाड़ है, शहर में कितने लोग हैं? आप कहेंगे बहुत तो आ रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे नहीं आ रहे, 1% भी नहीं आ रहे जितने हजारों लोग हैं इस शहर में, है ना? अब मैं नहीं कह रही सारे इधर ही आएंगे तो तलक्की होगी, जो जहां जा रहे हैं वो तलक्की से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस लफ्ज की खूबसूरती दिखा रही हूँ। फिर आप देखिए मजे की बात एक और है इस लफ्ज के अंदर, फतलक आदम में रब्बी कलिमात, ये लफ्ज कलिमत क्यों आ गया? हम तो जानते हैं कि आदम ने दुआ सीखी थी, रब्बाना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना, वो बहुत डिटेल से आएगी सूरत अल अराफ में, तो लफ्ज़ कलिमात क्यों आए? ये भी आप फिर इसमें आप कहेंगे आज सारे सबक में फिर बातें इल्म की आ रही हैं कि यहाँ जुमला कैसे होना चाहिए था। अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं तो असल में ये जुमला कैसे होना चाहिए था, फतलक का आदम, पीछे तो बात तौबा की चल रही है ना, तो जुमला क्या होना चाहिए था, वल्लम आदम में रब्बी ही दुआए तौबा फताबा अलैहि, बात समझ गए। आदम ने सीख ली अल्लाह से दुआ तौबा की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ना तो यहां लफ्ज दुआ है ना अल्लाह है, लफ्ज क्या है कलीमात। क्यों? तुम्हें खजाना है वल्ला ही। कलीमात जो है ना, कलीमात उनकी जमा है, कलाम करना, बल हुआ कलाम अल्लाह। कुरान का तारुफ क्या है तीसरे पारे की किसी सूरत के आखिर में कि कुरान क्या है, बल हुआ कलाम अल्लाह। और सूरत कहफ के एंड पे क्या आया, मिदाद अली कलिमाती रब्बी ही। और सूरत लुकमान के एंड पे वलउलल बहरु, देखिए कलिमात अल्लाह के कितने, अल्लाह कहते हैं तुम सारी दुनिया के दरख्तों की लकड़ियां और समंदरों का पानी स्याही बनना और लिखो रब के कलिमात, रब के कलिमात नहीं खत्म होंगे। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही में वो सारा कुरान, ये जो मैं पढ़ रही हूं ना कलाम है ना अल्लाह का, ये कलिमात आदम ने सीखे थे मेरे बाप ने, उधर से इनहेरिट हुए तो मैंने सीख लिए। अगर यहां आदम के लिए कलिमात का लफ्ज ना होता ना, तो आज इंसानियत कुरान का कलाम एक लफ्ज ना पढ़ती, हाफिज एक लफ्ज ना कलमे का पढ़ता, क्योंकि आते ही नहीं पढ़ना। अल्लाह ने हमारे बाप आदम के दिमाग में कुरान के कलिमात और अल्लाह के कलिमात, कुरान तो सीधा सीधा अल्लाह का कलम है, तारीफें अल्लाह के नाम कलिमात हैं। इस कलिमात की तफसील में जाएं तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। इसमें भी खुशी का इजहार है। वो अल्फाज सिर्फ अल्लाह ही सिखा सकता था जो अल्लाह ने उनको सिखा दिए। फताबा अलैही, तौबा कबूल कर दी अल्लाह ने, पलट आया।